നമോത്തെക്കാടം നമോ ആയിരിയാടം നമോ ഉവഛായാടം നമോ നോൾ സഫസാഹൂരം മംഗളം ഭഗവാൻ വീരോ മംഗളം ഗോത്രമോ കണി മംഗളം കുന്ദ കുന്ദാത്യോ ജയ ധർമ്മോസ്തു മംഗളം സർവ മംഗള മാംഗല്യം സർവ കല്യാണകാരകം യഥാനാം സർവ ധർമാനാം ചൈനം ജയതു ശാസനം ചൈനം ജയതു ശാസനം ചൈനം ജയതു ശാസനം മോക്ഷമാർഗസ്യ നീതാരം ഭേതാരം കർമ്മഭൂതകാം ജ്ഞാതാരം വിശ്വതത്വാനാം വന്ദേ തദ്ഗുണലക്ഷണേ വന്ദേ തദ്ഗുണലക്ഷണേ വന്ദേ തദ്ഗുണലക്ഷണേ ഭുവന മേ സാര ഗീത രാഗ വിജ്ഞാനതാ ശിവ സ്വരൂപ ശിവകാര നമഃ പ്രയോഗ സംഹാരിക छह डाला की तीसरी डाल पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। लास्ट टाइम
क्या नंबर बोले आप?
गुरु पर चर्चा हमने करी थी, देव जिनेन्द्र गुरु गुरु परिग्रह बिन, इस पर हमने चर्चा करी थी। और उस पर से किसी को कोई क्वेश्चंस? दसवां नंबर का छंद है तीसरी ढाल का, देव जिनेन्द्र, मतलब जो देव होगा वो वही होगा जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करी हो। यदि उसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करी है और कर्मों को भी जीत लिया है, वो जिनेन्द्र हमारे भगवान है, वो देव है। गुरु वो जिन्होंने परिग्रह को छोड़ा है, अंतरंग और बहिरंग, और जिनके पास परिग्रह से छूटने की ही प्रेरणा मिलती हो। यहाँ पर किसी को कोई क्वेश्चन? यहाँ पर ठीक है। लास्ट क्लास में एक हम लोगों से गलती हो गई थी, मुझसे हुई थी एक्चुअली। हम लोगों ने बहुत सारे इधर उधर के हर जगह के नाम लिए थे। सो ये कौन सही है, कौन गलत है, क्या है, कैसा है, क्वेश्चन इसका नहीं है। हमें सिर्फ इतना समझना है, जिसके पास भी परिग्रह है या परिग्रह का हिडन एजेंडा है, जो कोई भी हमको संसार मार्ग में पांच इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति कराते हैं, जहां से वैराग्य मिलना चाहिए, जहां से नीरसता दिखनी चाहिए, वहां पर ही हमको यदि रस मिलता है, वहां से प्रेरणा मिलती है, तो वो गुरु सही नहीं है। इसका सिर्फ इतना मतलब, फिर अब वो आगे कोई भी हो और इसका डिसीजन कोई और नहीं लेगा, ये हम सबों के लिए, क्योंकि मेरे लिए जो सही नहीं है वो आपके लिए सही हो सकता है, आप जिसको सही मानते हो वो शायद उनको मैं सही ना मानता हूँ। तो ये वाले पैरामीटर्स हमको जिनवाणी में सिर्फ इसलिए दिए कि हम उनकी परीक्षा कर पाए, और परीक्षा सामूहिक नहीं होती, ये हमारी इंडिविजुअल काम है कि मेरा क्या मानना है, मैंने कैसा स्वाध्याय किया है, मुझे क्या लगता है। क्योंकि जब भी हम कोई बेंचमार्क सेट करने जाते हैं, ये सही है ये गलत है, तो उसमें हमेशा, क्योंकि बहुत सारे टाइप के लोग हैं, बहुत सारे उन लोगों के जिंदगी भर के सालों के उनके विश्वास हैं, और जब आप एक चीज आकर उनको बोल देते हो तो उनके लिए बहुत टफ होता है उसको एक्सेप्ट कर पाना। तो ना तो हमारे पास वो जिद होनी चाहिए कि सब हमारी बात माने, और ना ही should start putting कि ये सही है कि वो सही है, कि ये गलत है कि वो गलत है। हमें सिर्फ इतना पता है कि सच्चा गुरु वो परिग्रह के बिना होता है, और संसार में ये जो परिग्रह है ये मूर्छा है, ये सभी पापों में बहुत बड़ा पाप है और ये हिंसा के बिना नहीं हो सकता। इसके लिए गुरु वो हो जिसने परिग्रह पर भी जीत पाई हो और जिसके पास हमको भी परिग्रह से दूर जाने की प्रेरणा मिलती हो, वो सच्चा गुरु होगा। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन इसमें? नहीं, तो दो बातें हो गई हैं, देश की बात हो गई, गुरु की बात हो गई। अब इम्पोर्टेंट बात आती है धर्म, और पंडित दौलत राम जी कहते हैं धर्म दया जुत सारो। धर्म कौन सा सही है जो दयावान दयावंत है, जिसका दया यानी अहिंसा सारभूत है। तीन, देव तो कौन जो कि जिनेन्द्रो मतलब वितरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी हो, इंद्रियों की विजय करने वाला हो। परिग्रह वह जो 24 प्रकार के मतलब अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहे, वो गुरु। और जो धर्म है वह कैसा कि जो सारे धर्मों में सारभूत है, ऐसी अहिंसा, तो वह अहिंसा वही धर्म है। जिस धर्म में अहिंसा नहीं है वो धर्म सही नहीं है, वो मतलब धर्म की श्रेणी पर ही नहीं आता। धर्म की डेफिनेशन है जो सम्बन्ध भद्राचार्य देव ने रत्नकरण शौक्काचार्य में दी है, जो जीवों को दुखों से उठाकर सुख पर रख दे, मतलब समथिंग दैट हेल्प्स यू एलिवेट, समथिंग दैट हेल्प्स यू किल ऑल योर वरीज, हमारी सारे दुखों को, हमारी सारी परेशानियों को जो खत्म कर दे, जिसके सेवन से हम सुख की उपलब्धि कर पाए, वो धर्म है। ठीक है, हेलो।
हाँ, सॉरी मैं लेट ज्वाइन हुई आज। हाँ,
तो सारे दुखों को खत्म करके हमको सुख के स्थान पर रखे, वो धर्म है। तो यहाँ पर पंडित जी साहब ने जो धर्म का लक्षण दिया वो दिया अहिंसा, दया, दया यानी अहिंसा। ठीक है, अब ये राग का परिणाम है कि वीतरागता का परिणाम है, ये पहली बात हम थोड़ी देर में देखेंगे कि दया, जैसे गुरुदेव श्री बोलते हैं दया दान वृद्ध भक्ति का परिणाम, ये तो अधर्म है, ये तो अशुभ भाव है, ये तो संसार है, बराबर आश्रव बंध है। तो यहाँ तो उसको धर्म कह रहे हैं, धर्म दया जुत सारो। तो ये क्या चीज है और अहिंसा को इतना बड़ा स्थान क्यों दिया गया है, दया के लिए इतनी बड़ी रिस्पेक्ट क्यों दी गई है, उसको धर्म कह दिया, अहिंसा परमो धर्म। ठीक है, तो आज हम इस पर डिस्कशन थोड़ा करते हैं।
यहाँ स्लॉट की दया आ गई ना।
ओके, स्वर की दया क्यों, पर की दया में क्या प्रॉब्लम है? हाँ,
नहीं, पर की दया करने में तो राग है ना।
ओके,
राग राग तो आश्रव है, तो इट डजंट
ओके,
जीव के पर की दया नहीं करो, पर को जीव करके देखो तो हमारे सम्मान, जैसा मुझे दुख होता है तो उसको भी दुख होएगा, तो वो अपेक्षा से उनकी दया करो।
ओके okay. अच्छा, तो जैसे अरहन भगवान होते हैं, तो अरहन भगवान से हिंसा होती है कि नहीं होती?
नहीं होती।
अरहन भगवान के चलने फिरने से कुछ जीव, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होंगे, वो नहीं मरते?
उसका अभिप्राय नहीं है मानने का।
अच्छा, मतलब हिंसा होती है, उनका अभिप्राय नहीं है।
नहीं, वो तो जमीन से ऊपर चलते हैं, तो उसके
अरे, पर जीव तो हवा में भी रहते ना, हर जगह।
हमें भी देते हैं।
जब
उसका
हाँ,
उसमें कषाय नहीं है ना।
बराबर, मैं मतलब वो क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ उनके निमित्त से जीवों का मरण होता होगा कि नहीं होता होगा। जैसे कि जब 12वें गुण स्थान से 13वें गुण स्थान में पहुंचते हैं तो उनका जो शरीर है वो औदारिक से परमोदारिक में कन्वर्ट होता है, राइट करेक्ट। तो उनके जो शरीर में औदारिक से परमोदारिक होता है कन्वर्ट, इस कन्वर्जन में शरीर में जितने भी जीव होते हैं वो निर्जंतु होता है, शरीर पूरा स्वच्छ हो जाता है। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब जितने जीव,
हाँ हाँ, यहाँ परम औदारिक में जस्ट अपने आपके लिए वो क्लेरिफाई करना चाहती हूँ कि वो तीर्थंकर भगवान होते हैं उनको जन्म से ही परम औदारिक शरीर होता है, वैसे हमने गुरुदेव के प्रवचन में कई दफा सुना है, और वैसे हम जब वो पढ़ते थे तो वहाँ तभी ऐसा सुना था कि जब केवल ज्ञान होता है तभी परम औदारिक होता है। तो तीर्थंकर भगवान की कुछ उसका शरीर की विशेषता ही होती होगी कि जन्म से ही,
भगवान के शरीर की विशेषताएं होती है, फिर उनमें जो रक्त होता है वो सफेद कलर का होता है, व्हाइट कलर का ब्लड होता है उनको, रेड कलर का नहीं होता उनके, ये सारी उनकी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है शरीर में जो कि नॉर्मल हम सबके नहीं होती है,
इसलिए उनके निहार नहीं होता है।
हाँ तो स्पेशल है उनका निहार नहीं होता है,
शरीर भी परम औदारिक उनका
नहीं, नहीं परम औदारिक से नहीं कहा जाएगा वो, मतलब इट इज वेरी स्पेशल, वो तीर्थंकर के ही होता है वैसा शरीर और किसी के नहीं होता, बराबर। ये निहार नहीं होना तो ये चक्रवर्ती आदि के भी होता है कि उनके भी निहार नहीं होता बॉडी में, बट जितनी स्पेशलिटी होती है तीर्थंकर के शरीर में उतनी किसी के शरीर में नहीं होती। उनके शरीर में बहुत सारे लक्षणों से युक्त शरीर होता है, बहुत बहुत ही एक सुंदर उत्तम कृति होती है, देखते ही दर्शन हो जाता है, मुनिराजों की शंकाएं पूरी हो जाती हैं, तो अलग ही शरीर होता है उनका। लेकिन पर शरीर कब बनता है वो, जब वो 13वें गुण स्थान में आते हैं, है पेनी क्वालिटी, बट जो क्रम कहा गया है वो जब ये जीव अरहंत अवस्था को प्राप्त होता है तो इसका पूरा शरीर परमोदारिक हो जाता है। तो वह 18 दोष जो होते हैं हमारे जन्म जरा क्षुधा तृषा विस्मय आरत के रोग शोक मधुमोह मय चिंता श्वेत, ये सारे पसीना आना आंखें छलपकना नींद आना, ये सारे के सारे शरीर के, जैसे शरीर की जरूरतें हैं, स्वेट जो पसीना आता है शरीर में आता है, पलक झपकती है शरीर की झपकती, नींद आती है इट्स नॉट इन योर हैंड, आपको अपने आप अगर शरीर मशीन है वो थक जाती है इतनी स्ट्रेस, राइट। तो ये सब शरीर की कंडीशंस थी जो परमोदारिक शरीर में जीव आउटगो कर देता है, अब उसको जरूरत नहीं पड़ती नींद की, अब वो बूढ़ा नहीं होता, यू नो अब उसके नाखून वगैरह नहीं बढ़ते, ये सब कोई काम नहीं होता। तो ये जब वो कन्वर्जन होता है तो उस टाइम औदारिक से परमोदारिक में कन्वर्जन हो रहा है, तो बहुत सारे जीवों की हिंसा होती है, राइट। तो आई एम जस्ट सेइंग कि कोई एक ऐसा जीव हम बताएं जिससे बिल्कुल भी हिंसा नहीं होती किसी की, क्योंकि अरहंत भगवान के, आई एम नॉट सेइंग कि वो हिंसा कर रहे हैं, आई एम जस्ट सेइंग कि वो कुछ कर रहे हैं और यदि वहां आसपास जीव प्रेजेंट है और यदि वो बहुत डेलिकेट है तो देयर इज अ गुड चांस कि उन जीवों की हिंसा हो जाए, वेदर ही मीन्स इट और ही डज नॉट मीन इट। लाइक मुनिराज ने षटकाय के जीवों को नहीं त्यागने की इच्छा करी है, राइट, क्षयकाय के जीवों को नहीं करेंगे, लेकिन वो श्वास तो लेते होंगे, वो कदम तो रखते होंगे, तो सूक्ष्म जीवों का होगा, आई एम सेइंग कि कोई एक ऐसा जीव है जिससे बिल्कुल भी हिंसा नहीं होती,
मुनिराज के तो होती मगर अभिप्राय में नहीं होता, अभी अरिहंत भगवान का तो पता नहीं कि कैसा स्पेशल शरीर है उस लिए उनसे शायद नहीं होती होगी। पर परंतु परम औदारिक शरीर है तो भी वो विहार तो करते हैं, तो पता नहीं सूक्ष्म जीव के जो होते हैं। हेलो हेलो अनुभव जी,
ड्रॉप थी गया પાનુબેન બોલ્યું પણ ખબર નહીં કોણ બોલ્યું,
ના બીજું કોઈક બોલ્યું એટલે હું કહું છું, ખબર નહીં અવાજ બંધ થઈ ગયો સચિનભાઈ, આ સચિનભાઈ લઈ આવ્યા હતા, હું જરાક મોડી થઈ ગઈ ઓલું ઈમેલ જો.
જય જય જીનેન્દ્ર, ના અનુભવજી પોતાની મેરે આવેલા છે, હું લેટ મી ટેક વિથ હિમ, ઇફ ઇઝ નોટ એબલ ટુ ધેન આઈલ કનેક્ટ હિમ.
ઓકે
મેં ઓન કર્યું ત્યારે બસ એ બોલ્યા કે બધા આવી ગયા છે, એટલું જ.
ટેન
મિનિટ નો પણ આજે તો ઓન ટાઈમ જ હતા. આ લોકો પણ એની પ્લેબેક નંબર નથી ને આનો, એટલે આપણે આના અનુભવજી ના ધારો કે આજે સાંભળવા એ ખબર નહીં ક્યારે લોડ કરે, તો
અનુભવજી ના આખું વીક તમે સાંભળી શકો, કેમ કે આપણે તો સેટરડે પ્રોગ્રામ એના ઉપર રેકોર્ડ થાય ને, એટલે પ્લેબેક નંબર છે 1085.
હા ગયા વીક નું મારે સાંભળવું પણ પૂછતા ભૂલી ગઈ તમને, નંબર આપડો પેલા આખો લગાવવાનો
એટલે 1712432 1085 કરવાનો.
ઓકે, અને કોડ નંબર
સેમ જ મોનાનો છે, 3307701.
ઓકે થેન્ક યુ, આ મને નહોતી ખબર, કેમ ગયા વખતનું બહુ હતું ખબર છે, છેલ્લે બધી બહુ સરસ ચર્ચા થઈ હતી, મારે આમ પણ હતું. પણ આ લોકો ઇન્ફોન નો નંબર આપ્યો છે એ મને ખબર નથી પડતી કે એનો એ નંબર ફરીથી ડાયલ કરો તો કેવી રીતે આવી શકે રાજુભાઈ માટે.
આખો
એનો જ મને મોકલો છે ભાઈએ, ભવિભાઈએ.
ના એ છેલ્લા બે ડિજિટ માં ફેર છે.
એવું છે, હમણાં એક મિનિટ જોઉં મારી.
છેલ્લો 900 ને બદલે
0990 0990.
હા બોલો ને, તો 0900 ના 0990.
ઓકે, બાકી બધું સરખું છે.
હેલો,
હા
હા હા અનુભવજી,
જય જૈન, સોરી.
હા જી, હા જી, કહી લીજીએ.
હા તો આઈ એમ જસ્ટ આસ્કિંગ, ઇતના હી ક્વેશ્ચન હૈ મેરા કે કોઈ એસે આપ જીવ કો જાનતે હૈ જિસકે નિમિત્ત સે ભી હિંસા નહીં હો પાતી હો. इतने सारे टाइप ऑफ जीव
ओनली सिद्ध भगवान और मे बी अरिहंत भगवान, केवड़ी भगवान.
सिद्ध भगवान राइट
की बात कर रहे हैं या
सॉरी क्या
आप उन लोगों की बात कर रहे हो, सिद्ध भगवान और अरिहंत भगवान की, और यहाँ की बात पूछ रहे हो?
मैं तो ओवरऑल सारे जीवों में पूछ रहा हूँ, ऐसा कोई जीव है जिससे बिल्कुल भी हिंसा नहीं होती हो? तो राइटली सेड कि सिर्फ सिद्ध भगवान ही ऐसे हैं जिनसे कोई हिंसा हो ही नहीं सकती,
राइट?
मतलब इट्स नॉट पॉसिबल, वो चाह के भी नहीं कर सकते,
राइट? राइट
राइट
या
ठीक है. तो अहिंसा जो धर्म हुआ वो सबसे अच्छा किसका पलता है, जीवों को बचाने वालों का या सिद्ध भगवान का?
सिद्ध भगवान का.
बट उन्होंने तो किसी को बचाया ही नहीं, वो तो बस जाके लोक के अंत में बैठ गए।
मगर उससे कोई हिंसा ही नहीं होती तो फिर बचाने का भाव ही नहीं, बचाने का सवाल ही नहीं है ना।
तो सिद्ध भगवान की दया है कि नहीं है?
सिद्ध भगवान में दया है क्या? नहीं है
दया है ना, अपने 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 अपना अपने में स्थित रहते तो अपनी दया ही है उनको, अपनी हिंसा
नहीं। नहीं, बस जीवों की, दूसरे जीवों की दया है कि नहीं है? इतने सारे जीवों को बचा रहे हैं। आई एम जस्ट आस्किंग कि वो इतने सारे जीवों की रक्षा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?
पहले भगवान नहीं थे तब करते थे, अब थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी है आपका।
नहीं कर, वो उनको दया नहीं है, उनको राग राग कुछ भी नहीं।
अच्छा, तो उनकी दया नहीं है इतने सारे जीवों की, और फिर वो हिंसा कितने जीवों की करते हैं जब दया नहीं है तो?
सी, हमने कहा ना आपका क्वेश्चन,
उनको तो बचाना भी नहीं है, कुछ करना ही नहीं है तो।
करेक्ट। सो सी, देयर इज नो रिलेशन यहाँ पर जीवों की हिंसा का और अहिंसा का, दया का कोई रिलेशन नहीं है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि जिसके पास दया नहीं हो उससे जीवों की हिंसा नहीं भी हो, राइट? दिख रहा है ना ऐसा? सिद्ध भगवान के पास दया नहीं है, न दूसरे जीवों को बचाने का भाव है, फिर भी उनसे हिंसा होती ही नहीं है किसी की भी। करेक्ट, ठीक है ना? इतना इतना तो पक्का हुआ। जिसको हम दया कहते हैं, वो दया जो जो करता है, वो कितनी भी दया कर ले उससे हिंसा पक्का होगी। वो सांस लेगा तो होगी, वो चलेगा तो होगी, वो खाना खाएगा तो होगी, एनीथिंग दैट ही डज, व्हाटएवर, वो जो कुछ भी करेगा, वो भले ही कितना दयावान हो, कितना मंद कषाय वाला हो, वो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव वाले मुनिराज हो, बट जो शरीर जनित हिंसा है जो होती ही है, श्वास लेने में होती है, चलने में होती है, बड़े जीवों की नहीं होती। त्रस्त जीव दिख जाते हैं, उनकी बच जाती है, स्थावर जीव नहीं दिखते, जो उनका क्या? तो हिंसा तो है, हर जगह है। पैर रखने में हिंसा है, श्वास लेने में हिंसा है, उसके आगे तो क्या बात करेंगे हम, राइट? तो उनसे भी हिंसा तो होगी, यदि आप यहाँ पर एक शरीर के साथ हैं तो हिंसा तो होगी। अब क्वेश्चन ये होता है कि वो हिंसा किस टाइप की है, और उसे धर्म का, यदि वह हिंसा से ही धर्म को इतनी प्रॉब्लम है, दया को धर्म का इतना बड़ा लक्षण क्यों बनाया, राइट? क्यों हिंसा और अहिंसा की इतनी चर्चा हुई? आचार्य अमृतचंद्र देव ने तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ अहिंसा के ऊपर ही लिखा है, उन्होंने पूरा ग्रंथ सिर्फ एक अहिंसा, उन्होंने पांच पापों के नाम बताए तो उन्होंने स्टार्टिंग में एक डिस्क्लेमर दे दिया कि देखो पाप तो एक हिंसा ही है, बाकी के जितने भी पाप है वे हिंसा के बिना नहीं होते। तो भी एक एक का स्पेशल डिटेलिंग इसलिए कर रहे हैं सो देट हम और प्रिकॉशियस हो जाए। बाकी यदि परिग्रह बोला है तो परिग्रह हिंसा के बिना नहीं होगा, झूठ हिंसा के बिना नहीं होगा, चोरी हिंसा के बिना नहीं होगी। सारे पापों में पाप तो सिर्फ एक हिंसा ही है, बाकी सब उस हिंसा को करने के अलग अलग प्रकार है, राइट? तो उन्होंने पूरा ग्रंथ हिंसा के ऊपर लिखा, हर एक चीज में उन्होंने हिंसा को ही आखिरी में एस्टेब्लिश किया, आखिरी तक। तो हिंसा और अहिंसा, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, क्या है? और भी सारे धर्म थे,
हमारे में कषाय होती है तो ही हिंसा होती है, और कषाय के हिसाब से या मोराग देश से,
इट्स वेरी बेसिक, वेरी सिंपल, हम एकदम सिंपल तरीके से चले, हमें किस चीज का दुख है, हमें क्या प्रॉब्लम है कि हमें जन्म मरण का दुख है, बराबर? हम थोड़ा बहुत सेटल हो जाते हैं, हमको ठीक लगता है, जब हम गाड़ी सब सही चलने लगते हैं तब अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि सामने मृत्यु उपस्थित हो जाती है, बराबर? तो संसारिक सुख और संसारिक दुख तो आते जाते रहते हैं, ठीक है, बट उनके हृदय में, उनके मूल में एक जन्म और एक मरण, इन दोनों की जो साइकिल है वो बैठी हुई है। यदि मरेंगे नहीं तो नया जन्म नहीं होगा, करेक्ट?
हाँ।
एक और जन्म लेने के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन इज दैट यू हैव टू डाई, आपको मरना पड़ेगा तभी आप जन्म ले पाओगे नया। तो यदि आपको विधि क्षेत्र में भी श्रीमद भगवान के पास जाके जन्म लेने का मन है तो भी द कंडीशन इज आपको यहाँ से तो मरना पड़ेगा, विदाउट दैट इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो मरण और जन्म इनका साइकिल चलेगा और ये ही दो ऐसी चीजें हैं जो संसार को चलाएंगे। आप कितना एकदम एक गेम के जैसा, एक गेम है अभी स्टार्ट, अभी अभी चल रहा है, फिर एकदम से गेम ओवर होगा और फिर सब पुरानी मेमोरी इज लॉस्ट एंड अगेन देयर इज अ न्यू गेम। ऐसा नहीं होगा कि आपने अभी चलो चलो आपको थोड़ा बहुत बिजनेस करना आ गया, थोड़ा बहुत आपने स्वाध्याय कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, तो इन द नेक्स्ट बर्थ इट विल स्टार्ट फ्रॉम देयर, जिस पॉइंट पर आपने छोड़ा था, नहीं, इट विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो, राइट? सब कुछ एकदम नए जैसा हो जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। फिर आपको आपकी आधी जिंदगी फिगर आउट करने में लगेगी क्या करना है, क्या रास्ता है, क्या पाथ है, राइट? जैसे गुरुदेव श्री का भी यदि हम माने, एग्जाम्पल ले रहे हैं, और भी एमसी का भी पूर्व में कितने सारे मुनिराज हुए, कितने सारे पूर्व भव के हुए, तो पूर्वों में तो सब देशना थी बट उनको लग गए ना इतने सारे साल सही मार्ग पर आने के लिए, राइट? कहाँ स्थानक में दीक्षा ली, क्या किया, तो टाइम तो लगा ना, मतलब वो पुराना बल था, वो संस्कार थे, लेकिन स्टार्टिंग तो एकदम जीरो से ही हुई वापस। वही है, पीछा बल मिला, वो संस्कार मिले तो रास्ता अपने आप बनता गया, वो अंदर से वो जो एक क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस जो बल था कि नहीं हमें तो यही जाना है, वो संस्कार वश आता गया, बट रास्ते तो अपने आप मिले, अपने आप देखो किसी ने लाके, मतलब ऐसे नहीं वो ढूंढ रहे हों, उनको अचानक से हाथ में समय सार जी भी आ गया, हाथ में मोक्ष प्रकाश जी भी आ गया। उस टाइम पर जब ये कुछ पब्लिश नहीं होता था, उस टाइम पर श्रीमद राजचंद जी को भी समय सार मिल जाना, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो सामान्य हो, चीजें चल के ही आई ना, उन्होंने थोड़ी सोचा होगा, वो तो दुकान पे बैठे हैं अपनी, और कोई लेके आता है कि आप ये ग्रंथ पढ़ो आपको मजा आएगा, और फिर वो मोती हीरे देकर वो ग्रंथ को लेते हैं कि ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है, राइट? तो ये चीजें घट जाना, तो ये रास्ते तो बने, तो उदय में तो रास्ते बनते गए, बट उसके अंदर बेसिक में, एक बेसिस प्रोसेसिंग में क्या गया, अंदर का संस्कार जो बहुत थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला था वो बनता गया, बट स्टिल वी कैन नॉट डिनाय कि वो एक रीस्टार्ट ही था, पूरा स्क्रैच से स्टार्ट हुआ सब कुछ। तो ये संसार चक्र में मरण होता है, जितनी स्मृतियां पूर्व भव की होती हैं वो सब खत्म होती हैं, और एक नया जन्म एकदम ब्लैंक कोरी शीट जैसा स्टार्ट होता है। अब वो जिस हम आयु में जाते हैं, त्रियंश आयु में जाते हैं, तो हमने परावर्तन में इतने त्रियंश के भव किए हैं कि चलो हम यदि गाय बने तो गाय के क्या संस्कार होते हैं, उसके बॉडी में कैसी इच्छाएं होती हैं, वो सारी चीजें हमको अपने आप संस्कारवश वो बॉडी से याद आने लगती हैं, राइट? कोई सांप वगैरह बनेगा तो उसको अपने आप संस्कार के वश की, उसको नेवली के पास, कुत्ता बनेगा तो बिल्ली के पास, चूहा बनेगा तो बिल्ली के पास, तो ये सारी चीजें तो संस्कारवश चलेंगी, क्योंकि परावर्तन इतने कर लिए कि हमें सबका अभ्यास है, तो ये तो जेनेटिक मेमोरी टाइप हो जाएगा कि आपकी बॉडी, आपके इंस्टिंक्ट जानते हैं कि आपको ये करना, ये नहीं करना, ये खाना, ये नहीं खाना, इससे दूर भागना है, इसके पास रहना है, ये सेफ है, ये सेफ नहीं है। बट जितना भी हम कुछ करें, इट ऑल गोज इन वेन, जैसे ही मृत्यु उपस्थित होती है, आपने कितनी साधना करी हो, सब कुछ चला जाता है मरण के बाद। देव में भी उनको अवधि ज्ञान लगाना पड़ता है कि यार मैंने किया क्या ऐसा पूर्व भव में जो मुझे मिला, मतलब याद नहीं रहता उनको, याद करना पड़ता है। मरण के बाद एवरीथिंग गोज फॉर जीरो, ठीक है? तो इस दुनिया में, मतलब संसार में सबसे बड़ा जो दुख है उसको बोलते हैं जन्म मरण का दुख, ठीक है? हम इसलिए पहला पूजन में जो अर्घ भी चढ़ाते हैं, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, बराबर जलम निर्वपामी थी स्वा। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है हमारी पूजन में, आप 8 अर्घ चढ़ा देते हैं राइट, टोटल 8 द्रव्य होते हैं तो 8 द्रव्यों को चढ़ाते हैं और एक फिर 9वां अर्घ पर चढ़ाते हैं हम राइट। तो ये सोचने वाली बात है लोग कितने ज्यादा जैन दर्शन कितना पुनीत है, कितना सात्विक है। इन 9 में से एक में भी एक भी संसार सुख की वांछा नहीं की गई है, सिर्फ मोक्ष पद की वांछा की गई है, जन्म जरा मृत्यु विनाश न यानी मोक्ष मिल जाए, और फिर दूसरा संसार ताप विनाश न यानी मोक्ष मिल जाए, अक्षय प्राप्त पद प्राप्त है मोक्ष मिल जाए, क्षुधा रोग विनाश न मोक्ष मिल जाए, मोहांधकार विनाश न मोक्ष मिल जाए, अष्ट कर्म दहना ही नहीं, मैंने कुछ मिस कर दिया,
पुष्प मिस हो गया,
काम बाण काम बाण विध्वंस नाए यानी कि मैं अकामी हो जाऊं इच्छा रहित हो जाऊं मोक्ष मिल जाए, फिर
क्षुधा रोग
मोहंधकार अष्ट कर्म दहनाए यानी कि मोक्ष हो जाए, मोक्ष फल प्राप्त है यानी मोक्ष हो जाए, और अनर्ग पद प्राप्त है यानी कि अनर्ग पद यानी मोक्ष प्राप्त हो जाए। तो ये वाली बात तो पता नहीं कैसे आ गई कि मेरे को अच्छा घर मिल जाए, अच्छा पैसा मिल जाए, मैं एग्जाम में पास हो जाऊं, ये वाली बात तो हमारी पूजन में भी नहीं है कहीं भी, क्योंकि मोक्षार्थी को इच्छा मोक्ष के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं, मात्र मोक्ष अभिलाष राइट। तो ये तो हम पूजन में इतना इंस्टिंक्ट है कि एक जैन यदि है कोई तो उसको मोक्ष के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। तो फर्स्ट थिंग क्या है कि सबसे बड़ा जो दुख है वो जन्म जरा मृत्यु, जन्म का बुढ़ापे का और मृत्यु का, ठीक है। ये वाला जो दुख है इसको हम इन्फ्लुएंस, इस दुख को हम इंड्यूस कैसे कर सकते हैं, हम इस दुख को बना कैसे सकते हैं, कि यदि इस दुख को आपको कृत्रिमता से बनाना हो तो वो हिंसा के बिना नहीं बन सकता। आपको किसी को यदि जन्म जरा मृत्यु का दुख देना हो तो आपको उसको मारना पड़ेगा राइट। आप मारोगे तो आप दो काम करोगे, एक तो आप उसकी मृत्यु करोगे और उसका दूसरा उसका जन्म करोगे, तो मृत्यु के तुरंत बाद जन्म का भी दुख है राइट। दो दुख है, अकेली एक पैकेज नहीं है, मरण होगा तो साथ में जन्म का दुख फ्री मिलेगा वो मिलेगा ही राइट। एंड इफ इट हैज टू बी इंड्यूस्ड, यदि वो नेचुरल नहीं होगा, इफ इट हैज टू बी आर्टिफिशियल, तो वो हिंसा के बिना नहीं हो सकता, करेक्ट। जो संसार के सबसे बड़े दुख हैं, इफ दे आर टू बी मेड,
वो जो नेचुरल डेथ होती है, अभी यहाँ तो हम ऐसा देख लेते हैं कि किसी को तुम मारो तो फिर उसको जन्म लेना पड़ेगा, मगर नेचुरल डेथ होती है हाँ, उसमें भी वो जन्म तो लेना ही पड़ता है, मगर यहाँ
बराबर नहीं, हम कह रहे हैं अभी वी आर ट्राइंग टू शिफ्ट, वी आर ट्राइंग टू, हम ये देखना चाह रहे हैं कि हिंसा इतनी बड़ी चीज क्यों है, मरना हाँ। तो सबको है और सब अपनी काल लब्धि में ही अपने काल क्रम में क्रमबद्ध में जैसा होगा वैसा मरेंगे, बिना कारण के बिना आयु के पूरा हुआ कोई नहीं मरेगा, चाहे
हाँ।
वो काल मरण वाला हो चाहे अकाल मरण वाला हो। बट नाउ हम अभी निमित्त की अपेक्षा से देखेंगे, किसी ऑलरेडी जो सबसे बड़ा दुख है जन्म जरा मृत्यु का, उस दुख को देने का जिसका परिणाम है वो परिणाम सबसे खराब परिणाम होना चाहिए, सिंपल। जो सबसे बड़ा दुख है कि ये कोई सभी जीवों को अपना हित प्यारा है, अपनी जान प्यारी है, और हम उनकी जान पर ही क्वेश्चन करें, हम उनको मारने के लिए दौड़ें, मारने का परिणाम करें, तो वो परिणाम सबसे निंदनीय परिणाम है, क्योंकि सबको सबसे प्रीति, सबसे ज्यादा प्रीति अपने प्राणों से होती है, अपनी जान से होती है, इंस्टिंक्ट है, और ये एकदम इंस्टिंक्ट है। जैसे कि यदि कोई एक बोट डूबती थी, हम इस एक्सपेरिमेंट को करें, बोट डूबेगी तो जो यदि आदमी का इंस्टिंक्ट, यदि आप बताओगे किसी से तैरना नहीं आता तो इंस्टिंक्टिवली यदि कोई करेगा तो दूसरों को पकड़ कर भी, दूसरों के ऊपर जाकर भी वो तैरना चाहेगा इंस्टिंक्टिवली, बाद में उसको रियलाइज होनी मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं मुझे नहीं करना चाहिए, तो कोई बात नहीं, बट आपका पहला इंस्टिंक्ट हमेशा ये होगा कि आप खुद को बचाएंगे, फिर वो कैसे भी बचाएं, राइट, क्योंकि हमें सबसे अधिक प्रिय हमारे प्राण है. वी ऑल वॉन्ट टू लिव, हम सब जीना चाहते हैं, कोई नहीं मरना चाहता. इवन जो सुसाइड भी करता है वो मरना नहीं चाहता, वो मरने के लिए सुसाइड नहीं करता है, वो दुखी होकर सुसाइड करता है कि मुझसे जिया ही नहीं जा रहा, तो उसको लगता है कि चलो मैं सब कुछ बंद कर दूं, दिमाग बंद हो जाए, सब प्रॉब्लम खत्म होगी. बट वो रियलाइज नहीं करता कि मरने के साथ जन्म में तो प्रॉब्लम तो रहने वाली है, चाहे यहाँ पर रहें चाहे कहीं और, राइट. बट हूएवर जो भी है वो मरना नहीं चाहता, जीना चाहता है. ठीक है, प्राण वेरी इंपॉर्टेंट जो सबके लिए है, राइट. इसलिए वो वाला हम कई बार जो डिस्कस कर चुके हैं, श्रीमद राजचंद जी ने बोला था, जो गांधी जी का प्रश्न था कि सांप को मारना कि जाने देना, उन्होंने बोला कि देखो तुम्हें तो पता है कि तुम नहीं मरोगे, तुम मरने के बाद भी जिंदा रहोगे, क्योंकि तुमने आत्मा की अनादि अनंतता का विचार करके विश्वास किया है. लेकिन उस सांप के लिए तो उसके प्राण ही सब कुछ, उसका जीवन है. तो सांप को यदि मारोगे तो वो तो समझेगा कि वो मर गया. तो ऐसी स्थिति में इस नश्वर देह के लिए वहां पर उस सांप को मारने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि हम खुद अपने आप को छोड़ दें, राइट. आपको याद है ना ये वाला क्वेश्चन?
हाँ जी,
हाँ हाँ, राइट. तो क्या क्या है इम्पोर्टेंट यहाँ पर, कि जगत में बहुधा जीव वे स्वरूप से अनजान है, उनको नहीं पता वस्तु व्यवस्था क्या है, उनको नहीं पता कि कौन जीता है कौन नहीं जीता, आत्मा मरने के बाद क्या करता है. हम ये मनुष्यों को नहीं पता है और मनुष्य इसके बारे में नहीं सोचना चाहते, तो बाकी जो छोटे मोटे क्षुद्र जीव है उनसे इसकी क्या अपेक्षा की जाए. जब मनुष्य इतने इग्नोरेंट है, जब हमारे जैसे ही लोग इतने इग्नोरेंट है जन्म और मृत्यु को लेकर, सामने सबको मरता हुआ देखते हैं बट नोबडी इज बॉदर्ड, सबको इसलिए खुशी क्योंकि उनकी रिटायरमेंट इज वेल प्लान्ड, नोबडी इज वरीड के मरना और मरने के बाद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम वापस जी सकते हैं. तो जब मनुष्य इतने इग्नोरेंट है सामने खड़ी हुई मृत्यु के प्रति, तो बाकी के जीव उस पतंगे को तो कुछ सोचने ही नहीं है कि मैं जल जाऊंगा, वो तो जाएगा ही आग के पास, उसको थोड़ी सोचना है मरूंगा नहीं मरूंगा, राइट. इनको तो मृत्यु का विचार भी नहीं है, फिर दे कैन नॉट इवन इमेजिन कि हम मर जाएंगे, वो तो बस करते हैं जो काम करना होता है उनको इंद्रियों के अधीन. ठीक है, ये सब दौड़ने के बचने के काम तो संगी पंचेंद्री जीवों के, हिरण को पता पड़ गया कि चलो यहाँ पर शायद शेर की दहाड़ आ रही तो भागेगा. पतंगे को कुछ नहीं लेना देना, उसको तो मजा आ रहा है वो चमकती हुई लाइट देखने में और वो पास में जाता जाएगा उसके. चींटी को दिख रहा है कि पानी है बट उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें यहाँ पर, तो भागेगी नहीं, उसी साइड कहीं और चलती जाएगी. तो ये लोग के पास मन नहीं है सोचने को और इनके पास विचार नहीं है कि मरना क्या और जीना क्या. दे वो सिर्फ जो है उसमें जी रहे हैं, उनके कर्म फल चेतना और कर्म चेतना की मुख्यता है, राइट. हेलो, उनके लिए उनका जो नश्वर जीवन है वो ही उनका सब कुछ है और इसलिए उनके लिए मृत्यु बहुत बड़ी चीज है. तो हिंसा क्या करता है? हिंसा किसी भी जीव को मारना या सताना या उसका दिल दुखाना, या हम यहाँ पर भी इनको मारने की बात करते हैं, मारना या मारने का परिणाम ये उस जीवन उस जीव के लिए तो उसका सब कुछ खत्म कर देने जैसा है, सब कुछ. सब कुछ मतलब उसके लिए उसने क्योंकि अपने शरीर में एकत्व बुद्धि करी है, शरीर खत्म मतलब मैं मरा. ठीक है, हम ये बहुत व्यवहारिक पक्ष पर उसको पहले देख रहे हैं कि संसार में ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, कि सबसे पहले यू शुड बी सेफ. आत्मानुशासन जी में एक गाथा आती है, उस गाथा में लिखा कि यार जो घास को खाती है और जो इतनी भयभीत है कि थोड़ी सी आहट को सुनते ही बहुत दूर तक भागती है, और जिसने कभी किसी को सताया नहीं है ऐसी भयभीत असहाय और निर्दोष हिरणी को भी जो छुपके से मार देते हैं, ऐसे लोगों का विश्वास कौन करे? वो उनके पास शरण कौन होगा जिसका कोई अपराध नहीं है, जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाती, जो एकदम सेफ है, वो कुछ नहीं करती? ऐसे जीव को भी जो मार देते हैं, तो उनके पास कोई गुस्सा करने वाला जीव टिकेगा क्या? उनके पास सुरक्षित कौन है? उनके पास बिना डर के रह जाए ऐसा कोई है? उन पर ट्रस्ट कैसे किया जा सकता है? ये वह गाथा है, मतलब जो ऐसे जीवों को भी जो नहीं छोड़ते, वो किसको छोड़ेंगे? वो किसके सगे हैं दुनिया में? राइट
हाँ,
हाँ. Right? उनको लगेगा दो मिनट भी कि चलो मेरे घर में चूहे हैं तो उनको मार देंगे तो कोई प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं है.
हाँ.
अभी कोई तो कंट्री थी, आई थिंक लास्ट वीक कोई न्यूज आई थी, वहां पर चूहे बहुत हो गए तो वो क्रॉप को खत्म कर रहे थे. सो दे लॉन्च एन ऑपरेशन के उस पूरे में सारे चूहों को लाइक मास किलिंग का, तो नाउ इट इज नाउ एंटी, मतलब पूरे रेट्स को खत्म कर दिया, मिशन सक्सेसफुल, कंप्लीट प्लेनेट से राइट ऑफ कर दिए पूरे राइट्स. लास्ट वीक ही थी ये न्यूज शायद. तो कौन सोचेगा उनके पास? नोबडी विल थिंक, कभी नहीं. जो एक असहाय को, जो एक ऐसे जीव को जिससे कोई परेशानी नहीं, जो किसी को परेशान नहीं करता, उसको भी मात्र अपने शौक के लिए मार सकते हैं, उनके पास सुरक्षित कौन है? उनका भरोसा कौन करे? राइट right?
हाँ.
बहुत व्यवहारिक पक्ष है, लेकिन इसके अंदर समाधि तंत्र की एक बहुत इम्पोर्टेंट गाथा रखी हुई है. समाधि तंत्र में गाथा लिखी, क्या बोले आचार्य देव वहां पर, कि जो अपने शरीर को अपनी आत्मा मानता है, वह दूसरों के शरीर को भी उनकी आत्मा मानता है. ठीक है. जो
हाँ.
अपने शरीर को अपनी आत्मा मानता है, मतलब मैं कौन हूँ, मैं ये अनुभव ये जो दिख रहा है ये मैं हूँ, तो वो दूसरों को भी उनके शरीर को ही जीव मान लेता है. क्या ये कौन है? ये चींटी है, चींटी है ना, ये चींटी है, ये मच्छर है, ये चूहा है, दिस इज बिल्ली, दिस इज काऊ, ये मनुष्य, लड़का ये लड़की है. तो वो दूसरों के शरीर में ही दूसरों की आत्मा की कल्पना करता है. ठीक है. अब इन दो चीजों को हम लिंक करेंगे. एक, वो अपने शरीर को अपनी आत्मा मान रहा है, दूसरे के शरीर को दूसरे की आत्मा मान रहा है. दूसरी चीज, वो अपने आप को अपना सब कुछ मानता है, तो दूसरे का भी सब कुछ उसका सब कुछ हुआ. राइट. मतलब यदि मुझे लगता है कि मैं मरने के बाद नहीं जीऊंगा, तो सामने वाला भी मेरे बिलीफ में तो नहीं जिएगा. राइट. तो अब यदि इसके अंदर दया का परिणाम नहीं है, इसके अंदर यदि दया का परिणाम नहीं है, तो ये एक जीव की एक भव की हिंसा नहीं कर रहा है, वो उसके हमेशा के जीवन को नष्ट कर रहा है, क्योंकि उसने मानी है कि वो बस मर गया, मतलब हमेशा के लिए मर गया. इट्स कंट्रोल डिलीट, इट्स नॉट जस्ट डिलीट और फिर हम वापस रिसाइकल बिन से रिस्टोर कर लेंगे. एलिमिनेशन. हेलो. यानी कि शरीर में आत्मबुद्धि ये पहले बताती कि हमको आत्मा का ख्याल नहीं, आत्मा का ख्याल नहीं मतलब अनादि अनंतता का ख्याल नहीं. और ऐसा निर्विचारी आदमी अब वो सामने वाले को मार दे तो कितना रिस्क है ना. जैसे कि उसके लिए क्या एग्जांपल लें हम,
तो उसको ऐसा लगता है कि मैंने फॉरएवर उसका विनाश कर दिया ना.
हाँ, मतलब कर लगता नहीं है, उसने उसी इंटेंट से किया है कि ये खत्म हो जाए, मैं तुम्हें हमेशा के लिए मिटा दूंगा.
जैसे वो होलोकॉस्ट हुआ
था. हाँ, हमेशा के लिए मिटाने का जो एक ये
हिटलर ने जो होलोकॉस्ट उसको ऐसा था ना, मैं इनों को हमेशा के लिए इसका जस्ट ये रेस रवे रहे भी रहे ही नहीं।
करेक्ट। तो ये वाला जो परिणाम है ये एकदम ही मतलब किसी ने सोचा ही नहीं है कि कोई जीवन है, मरने के बाद क्या होता है, क्या नहीं होता, कैसे जीव दुखी होते हैं, कितना इसमें पीड़ा है, कितना इसमें दर्द है, हमें भी फील होता है, सामने वाले को कैसा होता होगा, तो टोटली थॉटलेस। तो एक जगह तो हमारे पास एविडेंट चीज ये है कि जे त्रिभुवन में जीवनन सुख चाहे दुख तय भयवन, तो सारे जीव है और सभी को सुख चाहिए। और दूसरी जगह ये है कि सबको पता है दुख में सभी दुखी होते हैं, तो कोई ऐसा नहीं कि किसी को पीड़ा में मजा आता और किसी को नहीं आता है, इट्स नॉट द केस। वो पागलपन हो सकता है कि उसको लगे कि नहीं नहीं मुझे मुझे जितना मारोगे मुझे अच्छा लगेगा, जैसे कुछ फेस्टिवल्स में होता है लोग अपनी बॉडीज को हर्ट करते हैं, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम दोनों में कुछ ऐसी चीजें हैं, दे डू इट, या तो वो खुद को पनिशमेंट देते हैं और खुश होते हैं, या वो किसी ऐसे इवेंट को मनाते हैं जहाँ पर कुछ गंदी चीज हुई थी और वो उसमें करते हैं चलो हम भी अपने आप को करेंगे ऐसा।
परंतु वो जो जो हंटिंग हंटिंग जाते हैं एनिमल्स को मारने, वो भी वो समय के लिए उसको तो अच्छा लगता है ना कि हाँ मैंने कुछ किया।
वो तो थॉट, वो तो सोचा ही नहीं है उन्होंने उसके, तो इसलिए तो इतना बड़ा पाप बोला है शिकार को, व्यसन में लिया है शिकार। आप मतलब किसी को ठीक है, एटलीस्ट जो शेर है, शेर हंटिंग शौक के लिए नहीं करता है कि चलो आज हिरण को मारेंगे, शेर खाने के लिए करता है, उसके पास रीजन है। बट हंटर के पास तो शौक है मैं कितना अच्छे से निशाने लगा सकता हूँ, सी चलो हम निशाने लगा के आते हैं, विल प्रैक्टिस। तो वो तो एक अलग ही लेवल का क्राइम है, उसके तो कसाई के लेवल कोई अलग ही लेवल पर है। और ये तो ऐसी चीजें जो हमारा प्रेजेंट जस्टिस सिस्टम है वो भी इनको क्राइम पर कैटेगराइज करता है, तो इनकी तो बात ही क्या करनी, इसको तो लोक में जिन लोगों को धर्म का नहीं पता है वो भी गलत मानते हैं। तो जो सच्चे धर्म की बात है उसमें तो वो उसकी चर्चा ही नहीं होगी, वो तो है ही गलत। बट यहाँ तो ये वाला बोल रहे हैं कि देखो अब हमें दो तीन चीजें पता है, जिससे बिल्कुल किसी की हिंसा नहीं होती वो सिद्ध भगवान है, और उन्होंने किसी को बचाने का ठेका नहीं लिया ना ही परिणाम किया मतलब। लेकिन यदि आपको सचमुच अहिंसक होना हो तो देयर इज ओनली वन फॉर्म इन विच इट इज पॉसिबल कि आप किसी जीव की हिंसा नहीं करो। अब किसी जीव की हिंसा नहीं करो ऐसा होने के लिए सिद्ध होना पड़ेगा, और सिद्ध होने के लिए क्या करें कि हम सारे जीवों को बचाएं कि नहीं, सिद्ध होने के लिए इतना पुरुषार्थ है कि अपने आप को जीव मानना स्टार्ट कर दो, क्योंकि सबके बेस में प्रॉब्लम यही है कि हम आत्मा को अलग नहीं देख पाते, बॉडी को ही आत्मा मान लेते हैं और हम फिर थॉटलेस हो जाते हैं, हमको लगता है क्या जा रहा है, थोड़ा ही तो पानी गिरा है कोई बात नहीं, थोड़ी देर तो और आग जला ली हमने कोई बात नहीं, ठीक है थोड़ी सी घास उखड़ गई कोई बात नहीं, हमको वहां ना तो स्थावर जीवों का ख्याल है ना त्रस्त जीवों का ख्याल है, और उनके साथ उनका रहने वाला आत्मा जो अनादि अनंत है उसका ख्याल भी नहीं है। तो आत्मा की पहचान के बिना हिंसा और अहिंसा की सारी बातें झूठी हैं। इसलिए अमृतचंद्र आचार्य देव ने पुरुषार्थ के उपाय में लिखा आत्मा में, तो फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड आत्मा, उन्होंने बाहर का बताया नहीं कि हिंसा बाहर के जीवों की रक्षा करने की नहीं करनी, उन्होंने बोला आत्मा में रागादि परिणामों की उत्पत्ति, रागादि विकारों की उत्पत्ति होना वो हिंसा है, और उनका उत्पन्न नहीं होना वही अहिंसा है। ठीक है जो धर्म होगा उसमें जीवों को सुख, जीवों को छाया मिलनी चाहिए, छाव मिलनी चाहिए, प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, तो वो धर्म उसको धर्म के पैरामीटर्स में काउंट ही नहीं करते हैं जिस धर्म में सबके भले की बात नहीं की गई हो। अब सबका भला कब होगा, जब आप सबको एक्सेप्ट करोगे, सबको एटलीस्ट जीव मानोगे, तो मेजॉरिटी ऑफ रिलीजन वो तो जीवों को गिनते ही नहीं है। कोई भी आप रिलीजन को लो, या तो वो उसको फूड चेन के नाम पर बोल देंगे कि नहीं दुनिया में तो ऐसे ही चलता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, कोई बात नहीं इट इज जस्टिफाइड कि एक जीव दूसरे जीव को मार रहा है, ये तो फूड चेन है, ये नहीं होगी तो पूरा ऑर्डर बिगड़ जाएगा हमारा बायोडाइवर्सिटी का, right? So these are the justification that people will always give. But dharm wo biased nahi hoga. It will be same for everyone. So bas ye itna bolega, jab aap us situation mein ho ki aap dusre jeevon ki raksha kar pao, tab you act responsible. Kyunki ab cheeti ko nahi pata hai ki wo dusre ki raksha kaise kare. चींटी की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि वो दया को पाले. चींटी इज नॉट इन दैट पोजीशन. आप उस पोजीशन पर हो. और देखो, ये धर्म पढ़कर एक व्यक्ति धर्म पढ़ता है और उससे कितने जीवों की रक्षा होती है, राइट? हेलो.
हाँ.
तो धर्म का सेवन करने से अकेली वो जो उसका सेवन कर रहा है उसको ही अकेली बेनिफिट नहीं है, उसके आश्रित अनंत जीवों की वहां पर उपकार होता है. एक व्यक्ति धर्म का आश्रय लेता है तो वो आश्रय लेगा उस व्यक्ति से. अब वो किसी को परेशान नहीं करता, दूसरे परेशान करें तो उनकी दया पर तत्पर, उनकी रक्षा में तत्पर रहता है और लोगों को भी उसका मार्ग बताता है. तो एक व्यक्ति इस धर्म को एक्सेप्ट करता है, कौन सा? दया के बिना, दया वाले या दया के बिना वाले? दया वाले धर्म को, मतलब अहिंसक धर्म को. और उसके कारण शट काय के जीवों की दया पलती है. सारे के सारे तीन लोग के जितने जीव हैं उनकी दया पलती है. एक कैंडिडेट ऐसा है जो उनके लिए अब सोच रहा है. वो ऐसा नहीं कि उसको सबको बचाने जाना है, जेन्युइनली वो जानबूझ के कोई कृत्रिमता से नहीं करता है, ऑटोमेटिकली वो स्वयं को आत्मा जानता है. तो फिर जितने भी आत्मा उन सबके प्रति उसको सारे आत्माओं में मैत्री भाव, प्रमोद भाव, कारुण्य भाव, माध्यस्थ भाव अपने आप चलता ही है, ठीक है? तो जीवों को बचाओ, या फिर बहुत गर्मी हो रही है तो बर्ड्स के लिए हम कहीं बाहर पानी रख दें, या फिर हम मछलियों को दाना खिलाएं, पक्षियों को दाना खिलाएं, ये नहीं है ना अहिंसा है ये, ना ये दया है. फर्स्ट स्टेज दया की ये है, अहिंसा की ये है कि हम पहले एक्सेप्ट करें कि जीव है, आत्मा है. क्योंकि रक्षा किसकी कर रहे हैं और किससे कर रहे हैं?
अपने अपने आप को, अपने आप को पहले देखें कि मैं आत्मा हूँ.
मतलब पता तो पड़े ना, हम जिसकी रक्षा कर रहे हैं वो चीज है भी कुछ के नहीं है, क्योंकि फिर कोई सेंस नहीं निकलता. मैंने आज इसकी रक्षा करी, कल उसको कोई और मार देगा, क्या मतलब है रक्षा करने का? मरना तो है ही उसको कभी ना कभी. व्हाट इज द सेंस? हाउ इज इट इवन? टाइम वेस्ट क्यों करूं मैं इसको? देखो, मरना तो है ही उसको कभी ना कभी. आज मैं नहीं तो कल कोई और मारेगा, राइट? तो फायदा क्या है दया करके? मुझे क्या मिल रहा है इसकी दया करने से? तो जब तक वो आत्मा की सिद्धि नहीं होगी, जब तक ये नहीं पता पड़ेगा कि ये भी वैसे ही जानने देखने वाला और सुख दुख का अनुभव करने वाला जीव है, और इसको भी, इसके भी परिणाम होते हैं, इसको भी यदि हमने थोड़ा सहज, थोड़ा अच्छा वातावरण दिया तो इसके परिणाम भी शायद पलटेंगे. इसके परिणाम भी यदि थोड़े राहत वाले होते हैं, थोड़े अच्छे होते हैं, तो आपको पता नहीं उसके कितने ज्यादा रिपरकशंस हो सकते हैं. आपने एक जीव की दया करी, जैसे कि क्या नाम है उनका, जीवंधर कुमार, वो जा रहे हैं तो वहां पर यज्ञ में एक कुत्ता घुस गया था. यज्ञ चल रहा था बहुत बड़ा, खाने की बहुत सारी सामग्री थी, तो कुत्ता घुस के खाने लगा तो सारे ब्राह्मण्स ने उसको पकड़कर बहुत पीटा, बहुत पीटा. वो ऑलमोस्ट डेड सिचुएशन पर आके रोड पर बाहर पड़ा हुआ था. जीवंधर कुमार जाते हैं और वो उस कुत्ते को देखते हैं, और फिर वो जाकर क्या करते हैं, उसको नमोकार मंत्र सुनाते हैं. मतलब उनको बहुत दया आती है, उनको लगता है क्या है ये, मतलब राइट? तो अब उस परिणाम क्या, उसको नहीं आता है नमोकार मंत्र. और ऐसा कुछ नहीं है कि नमोकार मंत्र में बहुत सारे चमत्कार ऐसे हो कि उससे सब कुछ होने लगेगा. ये कोई चमत्कार वाली चीज नहीं है कि नमोकार मंत्र का प्रभाव क्या है. ये उस कुत्ते के परिणाम और इनके इतने शांत, इनकी संवेदना का परिणाम, उनका इतना अफेक्शन, जब वो ऑलमोस्ट डेड सिचुएशन पर है तो समबडी इज ट्राइंग टू सूद यू, तो डमकार मंत्र के शब्द तो निमित्त है उसमें, बट उसके परिणाम वहां पर अब जो आकुलता क्लेश वाले थे अब वो संभल कर शांत हो रहे हैं। और अब उसमें क्या होगा कि देखो उसको आयु का बंध भी होना और वो देवायु का बंध हो गया उतने से परिणाम में। अब यदि वो ये भी तो बोल सकते हैं चलो ये तो मर गया आप क्या करें, चलो ठीक है कोई बात नहीं मरना तो था ही इसको, बट अनादि अनंतता का ख्याल था और ये पता था कि जीव के परिणाम होते हैं, परिणामों का संबंध कर्म से है, कर्म से आयु मिलती है, आयु से शायद ही ऐसे संयोगों में पहुंच जाए जहां अगले भाव में ही अपने मोक्ष की कल्पना कर ले, मोक्ष की रचना कर ले, राइट। ऐसी वो मेंढक के साथ हुआ, हाथी के पैर के नीचे आ गया, ऐसी वो शेर के साथ हुआ, वो मुनिराज आकर वो तो खा ही रहा था ना, मुनिराज वो हिरण को तो खा ही रहा था, शेर क्या करना था, हाथी तो फंसे हुआ था वहां, उसको क्या सुनाना था। बट जो आत्मा को जानते हैं उनको पता है कि जीवन अनादि अनंत है और ये परिणाम जीव में निरंतर होते रहते हैं और इस परिणामों का बहुत क्लोज का रिलेशन है कर्म से, आयु से, गति से, और गतियों का रिलेशन बहुत क्लोजली है जिस प्रकार के आपको संयोग मिलते हैं, और उन संयोगों का रिलेशन बहुत क्लोजली है आप मोक्ष मार्ग में लग पाओगे या नहीं लग पाओगे। हमारे जैसे परिणाम है वैसे कर्म बनते हैं, वैसे हमको संयोग मिलते हैं। अब वो संयोग मोक्ष मार्ग से दूर करने वाले हो सकते हैं या उसके समीप लाने वाले हो सकते हैं। तो बहुत अहिंसा का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि जो धर्म का पालन करता है वो सारे जीवों को जीव मानने को सबसे पहले तैयार हो, क्योंकि एक जीव सारे जीवों को जीव मानता है उससे हजारों जीव धर्म में लगते हैं एक जीव के करने से ऐसा। और इसके लिए हमको कोई उदाहरण नहीं लेना है, इसके लिए हमारे पास सब 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 एकदम सामने है। एक जीव अपना काम करने निकलता है हजारों जीव उसके पीछे लगते हैं, वो उनको बुलाता नहीं है, वो उनसे बोलता नहीं तुम इसमें लगो, उसका कुछ प्रभाव ही अलग होता है। तो इसलिए पहली कंडीशन ये अहिंसा युद्ध क्यों बोला, ये बाहर से बोला। धर्म दया युद्ध क्यों होगा, क्योंकि धर्म मतलब जो सुख को दे, सुख किसको होता है, दुख किसको होता है, जीव को होता है, मतलब जो जीव को जीव रूप मानने को तैयार हो वो धर्म है। अब जिस धर्म में यही नहीं बताया जाएगा कि भैया ये तो दिख रहे हैं सब जीव हैं ही, बाकी पता है पानी अग्नि वायु ये भी जीव है, और तुम जो एनवायरमेंट को सेव करने की बात करते हो तो वो एक्चुअली तुम इन्हीं जीवों की रक्षा की बात कर रहे हो, तो करो इनकी, राइट। जब वो वाली बातें ही नहीं पता होंगी तो धर्म को फॉलो करने का मतलब क्या निकलेगा, वो आपको जब सब कुछ बता ही नहीं पा रहा है कि इतने फॉर्म जीव के हैं, जीवों का ये स्वरूप है। तो धर्म का सेम मेन फिल्टर है जो सबके लिए है। देखो एक इंद्रिय जीवों की मुख्यता से क्या है, कर्म फल चेतना है, मतलब उनकी लाइफ कुछ नहीं है, जो उदय में आ रहा है उसको भोगना है, कर्म फल चेतना एक इंद्रिय जीवों की मुख्यता से वो है। दो इंद्रिय से असंगी तक भी कर्म फल चेतना की ही मुख्यता है, क्योंकि उनका मन नहीं है लेकिन कर्म चेतना भी उनके होती है कि चलो उन लोग की इच्छाएं होती हैं अलग अलग, एक एक इंद्रिय की, चींटी को मीठा सूंघने की, पतंगे को कुछ देखने की, ऐसे हाथी को स्पर्श की, ऐसे अलग अलग एक एक इंद्रिय की विशेष इच्छाएं होती हैं। जो संघी पंचेंद्रिय है उसका थोड़ा दिमाग चलता है, उसको समझ में आता है, तो उसके कर्म चेतना इम्पोर्टेंट हावी हो जाती। अब उसको वो डिसाइड कर सकता है कि क्या करना क्या नहीं करना, ठीक है। तो सारा का सारा जो धर्म और अधर्म का उपदेश होगा वो किसके लिए होगा, संगी पंचेंद्रिय को। असंगी जीव उपदेश का पात्र नहीं है भले ही वो पंचेंद्रिय क्यों नहीं हो, ठीक है, राइट। इतना हम सबको पता है, जो असंगी है भले एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, उनके उपदेश उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता। मैं वापस पूछता हूँ आप लोगों से, एक मच्छर है वो भगवान की प्रतिमा के ऊपर बैठा है, कितना कितना उसने आज भगवान का स्पर्श कर लिया, कितना पुण्य का उदय उसका आज, गजब का दिन होगा ना, सफल जन्म मेरा हुआ, प्रभु परशन से आज क्या है नहीं मतलब
उसे कुछ पता ही नहीं है ये भगवान।
अरे लेकिन बताओ एक एक तो बैठा हुआ है टेरेस पर और एक बैठा एक फर्नीचर पर बैठा हुआ है टेबल पर मच्छर और एक भगवान की प्रतिमा पर, तो लकी कौन सा है तो बताओ मुझे, विच इज द लकी वन?
कोई भी नहीं।
कौन सा मच्छर का पुण्योदय है कि ये वाली पूरी चर्चाएं इनके लिए निरर्थक है, बिल्कुल निरर्थक है। इधर पर इनका कोई सेंस ही नहीं निकलता क्योंकि उनके वो है ही नहीं स्टेज जहाँ पर वो कुछ कर पाए, भगवान की मूर्त को देखकर वो कुछ विचार कर पाए, उनके भी परिणाम होने लगे, वैसे नहीं। वो लोग सब कर्म के अधीन चल रहे हैं, उनके अंतर्मूर्त में जैसे जैसे परिणाम ऊपर नीचे के होते हैं वो उनको हमें भी सुना दें, चलो नमोकार मन सुनो तुम्हारे मन परिणाम होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मच्छरों पर, चार इंद्रिय पंच इंद्रिय संगी जीवों पर इनका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उपदेश के पात्र नहीं है, उनके लिए कोई लिटरेचर नहीं है, उनको पढ़ाने की लिखाने की कोई बात नहीं है।
अनुभव जी,
तो अब हाँ
अनुभव जी, अब यहाँ ये परिणाम की एक दफा मुझे, मैंने एक वो यूट्यूब की किसी ने भेजी थी के प्लांट्स के वो वीडियो,
हाँ 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 आपने मुझे शेयर करी थी शायद,
हाँ मे बी आई थिंक, हाँ अभी आपने याद कराया तो मुझे याद आया, मैंने आपसे शेयर की थी तो वो वैसे जो हम वैसा समझ, जब ये मच्छर की बात करते तो वो वहाँ समझ में नहीं आता है कि क्या कैसे वो
totally, it is all, ये सब अबाउट एनर्जी है, वो एनर्जी के हिसाब से, जैसे कि आप ज्यादा धूप दोगे प्लांट को तो सूखेगा, आप अच्छे से पानी दोगे तो वो ग्रो करेगा। सिमिलरली आप उसको किस एनवायरमेंट पे रख रहे हो, बहुत नेगेटिव एनवायरमेंट पे रख रहे हो तो वो ग्रो नहीं करेगा। तो उसमें वही बता रहे थे कि उसको एक बोलता रहता है कुछ भी और एक बहुत पॉजिटिव एनवायरमेंट देता है,
अच्छी अच्छी तरह से बोलता है, एक थोड़ा शाउट करता है।
वो इट इज, उसका ये मतलब नहीं है कि प्लांट्स को कुछ समझ में आ रहा है, नो, उनके लिए पूरा जेनेटिक है, जैसा चल रहा है वैसा उनका चलेगा। इट इज अबाउट द एनवायरमेंट यू गेट, आपके पास कैसा आपको परवरिश मिल रही है। तो जैसे हम बहुत धूप में रख देंगे तो वो नहीं कर पाएगा, ऐसे यदि हम उसको ऐसे लोगों के पास रख देंगे जिनके पास नेगेटिव एनर्जी बहुत है, तो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ वो वाला प्लांट कि वो वाला प्लांट ऐसा हो रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ वो लोग कि उनके संयोग में वैसा प्लांट लिखा हुआ है। आपको समझ में आ रही है बात? उनके लिए प्लांट एक इंद्रिय का विषय है, ठीक है। और जैसे मैंने अपने घर पर एक प्लांट लगाया आम का, अब वो आम फल नहीं दे रहा है तो क्या बोलेंगे? मैं यही बोलूंगा मेरी किस्मत में फल नहीं थे, ये थोड़ी बोलूंगा आम का फल एक पेड़ कितना खराब है, निकम्मा है, क्या कर रहा है ये, तो उसको क्या फर्क पड़ता है? इट्स माई नेगेटिव, मेरा पाप का उदय कि मैंने लगाया और देखो आज ही वो खराब हो गया पौधा, तो उसमें वो एक्सपेरिमेंट में शो कर रहे हैं कि नहीं नहीं देखो ये प्लांट समझ रहा है और ये इतना बुरा कर रहा है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ देम, इट्स बिकॉज ऑफ यू, आपकी नेगेटिव एनर्जी है, वो आपके लिए वो कर्म के उदय में प्राप्त सामग्री है। आप उस वे से इसको देखो, ना कि इस वे से कि कितना स्मार्ट है, उसके पास ब्रेन है, उसके पास कोई ब्रेन नहीं है।
हाँ,
वो तो बेल भी ऐसी करती है कि यदि बेल को कुछ मिल जाए तो उसके ऊपर ग्रो करती जाती है, तो बेल ने क्या देख लिया है कि यहाँ पर उसको सहारा है, तो वो ऑटोमेटिक है उसका, इट डजंट मीन कि उसके पास सोचने की पावर है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स उसमें तो कई प्लांट्स खाते भी हैं जीवों को, तो वो सब उनकी, वही बोल रहा हूँ, कर्म फल चेतना है, वो कर्म के उदय के अधीन करते हैं जो कुछ भी करते हैं। ठीक है, तो
अनुभव जी ये
पंचेंद्रिय
संगी पंचेंद्रिय कब बनेंगे?
नहीं, यही तो लॉटरी है इतनी बड़ी जो हमारी लग गई है, यही तो दुर्लभ है। यहीं पर अभी आया था ना पहली डाल में, दुर्लभ लही जो चिंता मणि त्यों पर्याय लही त्रस्तणी, एक इंद्रिय से दो इंद्रिय बनना इतना महान पुण्य का उदय है। मतलब अर्थ वॉर्म, एक कैचुआ बनना जो कि लेबोरेटरीज में जाके बच्चे जिसको काट के पढ़ाई करेंगे, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स इसमें करेंगे जो पढ़ाई के, देखो इसको ऐसे इंटरसेक्शन करते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन ऐसा है, इसमें ये पाया जाता है, उस गंदी वाली स्थिति में आना वो भी इतना पुण्य का उदय है, गजब का पुण्य का उदय। मतलब हमारे लिए सोलवे स्वर्ग में जाना जितना सरल है, बहुत सरल है उसके सामने। यो श्रावक वृत्तपाल, क्या 11 प्रतिमाओं को आप अच्छे से पालो, आप सोलवे स्वर्ग चले जाओगे। आप नौवे ग्रीवे चले जाओगे, कितनी इजीली आप 28 मूल गुण का अखंडित पालन कर लो। ये मुनि बनना बहुत सरल है, नौवे ग्रीवे जाना बहुत सरल है, लेकिन एक इंद्रिय अवस्था से दो इंद्रिय अवस्था में आना ये बहुत असीम, मतलब भयंकर पुण्य के उदय का काम है।
तो उन लोगों को पुण्य कैसे मिलते हैं?
मतलब हाँ, ये लॉटरी लगी हमारी, पता नहीं किस
टाइम। लेकिन वो एकेंद्रीय जीव जो है वो बहुत साल तक एकेंद्री में रहते, तो वहां से दो में कैसे आएंगे, उसको पुण्य कैसे मिलता है?
ये व्यवस्था ऐसी है, हर अंतर मुहूर्त में शुभ से अशुभ और अशुभ से शुभ परिणाम बदलते रहते हैं, उपयोग हमेशा एक सा नहीं रहता। ये सबके लिए ट्रू है, आपके लिए भी और एक इंद्रिय जीव के लिए भी। कोई भी एक परिणाम यदि वो वैभाविक परिणाम है तो वो निरंतर नहीं होता, नहीं तो वो स्वभाव हो जाएगा, तो अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं रहता। यदि कोई रहेगा तो शुद्धोपयोग रहेगा अंतर्मूर्त से ज्यादा, और फिर यदि अंतर्मूर्त तक टिक गया शुद्धोपयोग तो अनादिकाल अनंत काल तक रहेगा, क्योंकि वो स्वाभाविक परिणाम है। वैभाविक परिणाम यदि है या तो पाप का हो या पुण्य का हो, राग हो या द्वेष हो, अंतर्मूर्त से ज्यादा एक सा नहीं रहेगा, तो उनके भी तीव्र कषाय के और मंद कषाय के ऐसे पलटना होता रहता है। अब लॉटरी ये है कि जिस टाइम मंद कषाय का परिणाम हो उस टाइम उनके आयु का वैसा बंद हो जाए उसी टाइम, क्योंकि आयु का बंद होना वो कर्मों के अधीन है, आपके अधीन नहीं है, वो तो एक ड्यूरेशन होती, जैसे कि सीजन में आम पकते हैं, ऐसी आयु के सीजन में आयु के 1/3 टाइम 2/3 टाइम पर आयु कर्म का बंद होता है, तो वो आयु कर्म के हाथ पर है, तब भी नहीं होगा तो आयु के एंड पर होगा, जब मर रहे होंगे तब होगा हमारा। तो वो कर्म को क्लिक कर जाए कि इसके अब आयु बंधनी है और वो ऊपर की आयु बन जाए, तो पूरा लॉटरी सिस्टम है, किसको होगा किसको नहीं होगा नोबडी नोज
ना, राइट? ओके।
और इमेजिन ना, मतलब आप अनंत काल बाद भी यदि यहाँ पर आओगे तो आपको बिल्कुल आपका अमेरिका वैसे ही चलता दिखेगा, बिल्कुल उतने ही प्लांट्स हों शायद, क्योंकि पुद्गल परावर्तन में वापस आपको वैसे का वैसा सब मिल जाए, वैसे ही लोग हों, वैसी साइड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हों, बट डिफरेंट क्या होगा कि जो लोग वहां पर चल रहे हैं वो शायद जो पहले अभी चल रहे हैं आपके सामने वो उस टाइम तक सिद्धशिला में पहुंच जाए, और वो जो लोग वैसे के वैसे उतने के उतने दिखेंगे वो शायद उस टाइम के अनंत काल बाद के जो निकले हुए कुछ निगोद से जीव हैं वो होंगे, बट एट एनी पॉइंट इन टाइम निगोद में उतने ही जीव रहते हैं, सिद्ध दशा में उतने ही जीव, मतलब ये सारी संख्या ऐसी, ये साइकिल ही चल रही है, तो पेड़ हमेशा उतने ही मिलेंगे आपको इस टाइप से। अनंत काल बाद भी उतना ही निगोद में जीव बचेंगे जितने अभी हैं, लगभग लगभग कुछ ऐसा उसमें घटती बड़े ना सिद्ध अनंतता घटे ना राशि निगोद, जैसी की तैसी रहे यह जिन वचन विनोद। ना सिद्धों की राशि बढ़ती है ना निगोद की राशि कम होती है, ये जिन वचन में कहा गया है, क्योंकि इनकी राशि इतनी बड़ी बड़ी है, क्या होगा क्या होगा?
वो मुझे समझ में नहीं आया। हेलो,
क्या
हाँ, के निगो सिद्ध की राशि बढ़ती नहीं है, वो कंपेरेटिवली वो हो गया ना के नंबर के।
देखो मैं समुद्र में जाऊंगा, मैं अपने यहाँ वॉशरूम से एक बकेट भरता हूँ पानी की और समुद्र में जाके डाल दूंगा, कितना पानी बढ़ गया समुद्र का?
जरा भी नहीं।
और मैं समुद्र से एक बकेट पानी लेके अपने घर ले आऊंगा तो कितना कम हो गया?
नहीं, हार्डली हार्डली।
तो 6 महीने 8 साल में अनंतानंत अक्षय अनंत जीवों के समुद्र में से 608 जीव निकलते हैं, तो क्या मतलब हुआ उनके निकलने का? और अनंत 6 महीने 8 साल में अक्षय अनंत जीवों में 608 जीव और जुड़ जाते हैं, उनके जुड़ने का मतलब क्या हुआ? तो इसलिए इनका बढ़ना घटना होना नहीं होना सब एक ही है, इनको मटेरियल नहीं है कुछ कि ये बहुत सारी बढ़ोतरी हो गई इस बार पॉपुलेशन में सिद्धों की, या निगोदिया जीव बहुत कम हो गए अचानक से, ऐसा कभी नहीं होगा वहाँ। ये बस आप ऐसा समझ लो कि जब अनंत काल पहले की 24 ही हुई होगी और पांचवा काल चल रहा होगा ऐसे ही, तब शायद हम किसी एकेंद्रीय अवस्था में होंगे, लेकिन तब भी यहाँ पर कोई जीव आत्मा की चर्चा कर रहे होंगे।
हाँ,
तो संसार की मशीन में सेटिंग ऐसी ही है। अब बस ये हुआ है कि उनका प्रमोशन सिद्धत्व में हो गया और आपका प्रमोशन निगोदिया से यहाँ मनुष्य में हो गया है, और अनंत काल बाद भी ऐसा होगा कि आप प्रमोट हो जाओगे और कोई वहां से यहाँ आ जाएगा और वहां पर उतने ही बने रहेंगे। तो दूर से भी संसार की पेंटिंग को हम देखेंगे तो वो एक सी ही दिखेगी, कुछ चेंज ही नहीं हुआ। बट डिफरेंस ये आया है कि जो पहले यहाँ आत्मा था वो सिद्ध बन गया और जो वहां पर था वो मनुष्य बन गया है। बाकी सब कुछ ऐसे, क्योंकि संख्या अनंत है, अनंत अक्षय अनंत, मतलब उसकी यदि हम एक्चुअल कर्णानियों के हिसाब से गणित देखेंगे तो हमारी लाइफ तो पता नहीं हम कैसे मनुष्य बन गए, जो बोधि दुर्लभ भावना है, हमें रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि यार ये कितना बड़ा जुआ खेल के हम आ गए हैं, और अभी ये भी वेस्ट हो गया, मतलब फिर तो हमारे अभाग्य की महिमा नहीं कही जा सकती। इतना बड़ा अवसर है, क्योंकि आप ही देखो ना, मतलब कितने लोग हम लोग हैं जो इस बात को आज मनुष्यों में चर्चा कर रहे हैं, हम दूसरे की तो बात ही नहीं करें। किसको पड़ी है कि मरने के बाद क्या होना है, किसको पड़ी है कि ठीक है चलो एवरी वो सबको अच्छी जॉब हो जाए, अच्छा फेम हो जाए, अच्छा नाम हो जाए, रिटायरमेंट अच्छी हो जाए, अच्छा बंगलो हो, सी फेसिंग हो, और मेडिकल की अच्छे से अपनी हेल्थ बढ़िया रहे तो जिम जाते हैं अपन, और सोशल बढ़िया है तो हमारी पार्टीज चलती रहती हैं।
Nobody
is bothered.
नहीं, आपकी बात एकदम 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 करेक्ट है।
इसलिए संगी पंचेंद्रिय पना इसके उपदेश का अधिकारी है, और अब इसको उपदेश किस जाति का मिलना चाहिए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। बाकी क्यों किसी को नहीं पता है कि जगत में कैसे चलना है, नोबडी हैज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, किसी के पास नहीं है, ये सिर्फ इसके पास मैनुअल आया है कि भैया देखो इतने सारे 6 काय के जीव होते हैं, 14 प्रकार के जीव समास हैं, इनके हिसाब से हम लोगों को इन सब की रक्षा करनी है और अपने को आत्मा रूप देखना है। वो असंगी को नहीं पता है कि उसको रक्षा करनी है, शेर को नहीं पता है वो तो खाएगा हिरण को, सांप को नहीं पता है वो भी खाएगा कीड़ों को, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, हमें पता है। तो धर्म वैसा हो जो एक जीव को सर्व जीवों का रक्षक बनाए, उसको दयावान बनाए, इसलिए धर्म का लक्षण है दयायुक्त। जब इस पूरे विश्व में कोई दया करने को तैयार नहीं है, सब कर्म के द्वारा प्रेरित है, तो कोई तो ऐसा हो जो धर्म की इच्छाओं पर इतना उज्ज्वल चित्त का बन जाए कि उसके पास आके सारे प्राणी निर्भय हो जाए, उसके सामने बिना डरे रह पाए। और इसलिए हमारे यहाँ सारे मंदिरों में वो फेमस पेंटिंग होती है, मुनिराज बैठे हैं उनके सामने गाय और शेर आकर पानी पी रहे हैं एक साथ, हिरण और शेर आके पानी पी रहे हैं एक साथ। वो ऐसा वैसा नहीं है, वो अहिंसा धर्म की फोटो है। वो ये बोल रही कि एक व्यक्ति आत्मा को जानता है और उसकी छाया में सारे आत्मा निर्भय हो जाते हैं, हमें तो कोई कुछ नहीं करेगा। भगवान के समव शरण में बताओ शेर जाता है, बिल्ली जाती है, मेंढक जाते हैं, सांप वहीं बैठा है, नेवला वहीं बैठा है, और किसी को कोई डर नहीं। कैसा निर्भय, कैसा मतलब एकदम गजब का नहीं होता होगा वो सीन, आप खुद ही समझो ना, हिरण भी है शेर भी है, कोई डर नहीं, दोनों सादर भी हो जैसे मिलते हैं, श्रावक होंगे दोनों पंचम गुण स्थान वाले, कोई चौथे गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि होंगे, वो अपनी भाषा में शायद तत्व चर्चा भी करते हो वहां पर, वो भी खुश होते हो भगवान को देखकर, मुनिराजों को देखकर, वो भी भावना बात करे मुनिराजों को आहार हम दे पाए कभी तो उनको भी खुशी होती है, और हमारे जंगल से भगवान का समव शरण का विहार होगा, होता हो उनको भी ऐसा। पर ये कैसे हो रहा है, ये दया धर्म का महत्व है कि यदि मुझे यदि अपने आप को प्रोपगेट करना है तो सबसे पहली चीज है ये हम लोग को मैनेजमेंट में आज सिखाई जाती है, इफ यू वांट टू बी अ गुड मैनेजर, आपको यदि अच्छा मैनेजर बनना है, मेक पीपल अराउंड यू कंफर्टेबल, आपके आजू बाजू जो लोग हैं उनको आपके पास आने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मेक योर सेल्फ रीचेबल। तो धर्म कौन सा सबसे अच्छा है जिसके पास सारे जीव आने को प्रसन्न रहते हो, निर्भय रहते हो, जो अहिंसामय हो, जो जीवों को सुरक्षित करता हो। इसलिए अहिंसा ये धर्म का बेस है, जो कुछ को सुखी करता और कुछ को दुखी करता है वो धर्म नहीं हो सकता। आप मेरी सेवा करो तो आप सुखी हो जाओगे, नहीं करोगे दुखी होगे, वो धर्म नहीं है। आप इतने जीवों की बलि दे दोगे तो सुखी हो जाओगे, वो उन जीवों का क्या, उनको भी तो धर्म चाहिए भैया, वो भी तो जीव है, उनकी रक्षा कौन करेगा? आपने मुझे तो बता दिया कि मुझे स्वर्ग चाहिए तो मैं इनको होम कर दूं। नहीं नहीं, जिनकी बलि दे रहे हो वो भी स्वर्ग चले जाएंगे, वो मुझे नहीं पता कैसे, अभी दुखी है तो बाद में सुखी कैसे होगा, वो बेचारा अभी जल रहा है, वो बाल रहे हो तो उसको। सो धर्म हैज टू बी दैट कि उसके एक चीज, क्योंकि अब देखो पूरी रक्षा का किसके ऊपर है जिम्मेदारी, हमारे ऊपर, क्योंकि बाकी किसी को पता ही नहीं है कि जीवों की दया भी पालनी होती है। राइट, तो पंचेंद्रिय जीव संगी, उसमें से ही गिने चुने लोगों को ये धर्म मिलता है, वो उसको अपने उज्जवल चित्त में धारण करते हैं और एक धारण करता है और अनंत जीवों का उपकार होता है, अनंत असंख्य जीव मोक्ष मार्ग में लगते हैं, अनंतों की दया पलती है एक के धारण करने से। इसलिए धर्म का लक्षण दया अहिंसा है। ठीक है, कोई क्वेश्चन आपके? आई थिंक मैंने टाइम बहुत ले लिया है।
अच्छा हुआ।
हाँ।
तो हम इस पर अहिंसा जो आपने बोला था स्टार्टिंग में कि आत्मा वाली अहिंसा, उस पर भी हम अभी हमने बहुत व्यवहारिक पक्ष देखा है इसका, बाकी वो वाला जो पक्ष है जो सिद्धत्व का पक्ष है, जो सिद्ध भगवान की क्यों नहीं होती किसी से हिंसा, वो वाला हम थोड़ा सा डिस्कस करके फिर नेक्स्ट 11वीं गाथा पर, हम इसके 11वें छंद पर नेक्स्ट क्लास में। कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो प्लीज बताइएगा।
मुझे इस अनुभव जी की जो नेचुरल डेथ होता है, मैं मनुष्य तो जब भी उसका डेथ होता है तो वहाँ हिंसा वगैरह मृत्यु ना हो, ऐसे जब आप बोलते हैं तो वहाँ कैसे देखना है उनको, कौन सी जात की हिंसा है वहाँ?
नहीं देखिए, वो वाला कंटेंशन ये था, हम जब समझ रहे थे, हमें समझ रहे थे भी हमको सचमुच किसी को परेशान नहीं करना है तो आप सिद्ध बन जाओ, क्योंकि वो ही एक ऐसे हैं जो किसी को परेशान नहीं करते, निमित्त तरीके भी नहीं। बाकी यहाँ पर जो मृत्यु है, जैसे हम श्वास भी ले रहे हैं तो हम किसी को मारने के लिए श्वास नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी संकल्पी हिंसा नहीं है। तो जब तक संकल्पी आरंभी विरोधी ये वाली हिंसाएं नहीं होती है, तब तक हमें श्रावकों को इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो वो जो नेचुरल डेथ हो रही है वो ठीक है, वो किसी ना किसी कारण से हो रही होंगी वो हमारे, लेकिन आपके भी उससे भी प्रॉब्लम है और आपको एक्सीडेंटली भी किसी की मृत्यु में निमित्त नहीं बनना है, तो ओनली वे टू डू दैट इज बिकमिंग सिद्ध। आप सिद्ध बन जाओ, आपकी सारी लाइफ आप एकदम अहिंसक बन जाओगे। तो इसके लिए था, एक कंट्रास्ट दिखाने के लिए। एक सिद्ध भगवान ही ऐसे हैं जो किसी को उनको किसी से लेना देना नहीं है, उनको किसी जीव की दया भी नहीं है, लेकिन उनसे किसी की हिंसा नहीं होती, इसलिए उनकी सबसे सुंदर दया है, सबसे सुंदर अहिंसा उनके पास है, उनकी उत्तम क्षमा वास्तविक है।
बराबर, मगर फिर भी अभी आप तो अपन ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं कर सकते है ना कि हिंसा वगैरह मृत्यु ना हो, जो अभी
क्यों,
क्योंकि अभी जैसे आपने बोला ना कि ये श्रावक की बात हुई तो आरंभी हिंसा नहीं है, तो और कौन सी
बराबर ठीक, तो यदि दूसरे को यदि हमको मारना है तो हिंसा करनी पड़ेगी, वो नेचुरली मर रहा है तो ठीक है, जैसे आप श्वास ले रहे हो तो श्वास में जो जीव मर रहे हैं वो नेचुरली मर रहे हैं कि कैसे मर रहे हैं?
नेचुरली,
लेकिन आप हो ना उसके निमित्त, तो कुछ ना कुछ, जैसे कैंसर से कोई मर रहा है तो कैंसर के जो ऑर्गेनिज्म है वो तो निमित्त है ना, कुछ ना कुछ तो है उसमें निमित्त, बट हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते। तो मैं तो बोल रहा हूँ जब संकल्प ही किसी के पास जाते हैं, कोई निमित्त रूप से भी बनता है तो वो भी, मतलब सिद्ध भगवान की तो वैसी वाली हिंसा भी नहीं कि कोई ना कोई निमित्त भी बने, वो दूर दूर तक वो कहीं है ही नहीं किसी हिंसा के, वो वहां बताना था और कुछ भी नहीं।
हाँ हाँ, समझ गई। ठीक है,
ठीक है, ठीक है, हाँ ओके, ठीक है, ठीक है, चलिए जिन मानी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, उसके लिए જીન વાણીમાં નો ભાઈ નો કાળ.